29. अपने केबिन का दरवाज़ा बाहर से खुलता देख अभिमन्यु ने नज़र उठाई. उसे उसका ही हमउम्र पर उसे थोड़ा छोटा कद का बेहद हैंडसम लड़का अंदर आता दिखा. उस लड़के के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी. उसकी तीखी जबड़े की लाइन और गहरे भूरी आंखों पर महंगे सनग्लासेस लगे थे. उसने ब्रांडेड जूते और कपड़ों के ऊपर गहरे नीले रंग की डेनिम पहनी हुई थी. वो लड़का बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं निभा रहा था. केबिन में आकर वो सीधे अभिमन्यु के सामने खड़ा हुआ और बोला, क्या बात है, हमारे कुंवरसा आजकल कुछ ज्यादा ही फास्ट एंड फ्यूरियस हो गए हैं. ये आवाज सुन अभिमन्यु ने नजर उठाई और जवाब दिया, समर्थ, तुम यहां इतनी सुबह सुबह मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? एंड वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. अभिमन्यु उसे देखकर बहुत खुश हो गया. समर्थ ने ताना मारते हुए कहा, कुंवरसा तो आजकल अपने शेड्यूल में ही बिजी रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उन्हें कुछ सरप्राइज दे दूं. वैसे मुझे तुमसे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कोई सरप्राइज दोगे, लेकिन तुमने मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया जिसे सुनकर मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया. क्या कहना चाहते हो? अभिमन्यु ने समर्थ को घूरते हुए कहा. समर्थ सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया और बोला, कुंवरसा, आपने तो सगाई कर ली और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा. ये बात सुनते ही अभिमन्यु बोला, अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर हमें ताना मारने आए हो? समर्थ ने नजरें फेरते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही मान लो, लेकिन अभी मैं तुझसे सच में बहुत नाराज हूँ. तुमने एंगेजमेंट कर ली और मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी. अभिमन्यु ने कहा, अरे हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं. एक्चुअली माँ ने इतनी जल्दी ये एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी और सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमने किसी को कुछ नहीं बताया. और समर्थ, तुम प्लीज इतनी छोटी सी बात के लिए हमसे नाराज मत हो. समर्थ ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो, तुम मुझे एक फोन कॉल कर सकते थे ना. लेकिन नहीं, तुमने कॉल करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है ना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट होना. अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा, समर्थ, तुम अभी हमारी बात नहीं समझ रहे हो, असल में ये सब कुछ माँ ने अरेंज किया है. समर्थ ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे मेरी होने वाली भाभी की तस्वीर दिखाओ. अभिमन्यु कुछ सोचने लगा. अभिमन्यु को सोच में डूबे देख समर्थ ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या बात है, कहाँ खो गए तुम, मुझे मेरी होने वाली भाभी की फोटो भी नहीं दिखाओगे क्या? अच्छा, अब अपने बेस्ट फ्रेंड पर भी भरोसा नहीं रह गया क्या? ये बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं भला तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगा, रुक जाओ एक मिनट दिखाता हूँ. इतना बोलकर अभिमन्यु अपने फोन में कुछ करने लगा. उसके पास एंगेजमेंट की एक फोटो थी जो अर्पिता ने उसके फोन पर क्लिक की थी. वो फोटो मिलते ही उसने तुरंत समर्थ को दिखाई. जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता की फोटो समर्थ को दिखाई, समर्थ ने उसका फोन हाथ में लेते हुए कहा, वाह, शी इज सो ब्यूटिफुल, सो गॉर्जियस, अभी यार तेरे तो भाग्य खुल गए, बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के अरेंज मैरिज में तुझे कितनी सुंदर बीवी मिलने वाली है. अभिमन्यु ने समर्थ को घूरते हुए कहा, और हम भी तो उतने ही हैंडसम हैं. समर्थ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फोन लौटाते हुए बोला, हाँ हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि होने वाली भाभी से कब मिलवा रहे हो? समर्थ का सवाल सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अब डायरेक्ट तुम अपनी भाभी से शादी में ही मिलना, उससे पहले तो मैं नहीं मिलवा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी उससे सिर्फ दो बार ही मिला हूँ. इसके बाद समर्थ अभिमन्यु के साथ बैठकर बाकी बातें करने लगा. वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में सुहासिनी जी किसी से फोन पर बात कर रही थी. फोन पर बात करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई, जी ठीक है, हम आ जाएंगे. इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए सोचने लगी. सुहासिनी जी को इस तरह सोच में डूबा देख इप्सिता के पिता अमरजीत जी अपने कमरे से बाहर आए. वो सुहासिनी जी के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या बात है सुहासिनी जी, क्या सोच रही हैं आप इतनी सुबह सुबह? सुहासिनी जी सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं सोच रही, हम तो बस सोच रहे हैं कि कल. सुहासिनी जी बोलते बोलते चुप हो गई. पत्नी के चुप हो जाने पर अमरजीत जी ने भौने सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है सुहासिनी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुहासिनी जी ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दरअसल हम रानीसा से बात कर रही थी. रानीसा का नाम सुनते ही इप्सिता के पिता हड़बड़ा गए. रानीसा मतलब कुंवरसा की माँ, उन्होंने क्यों फोन किया था? सब ठीक तो है ना? सुहासिनी जी ने हाँ में सिर हिलाया. हाँ सब कुछ ठीक है, उन्होंने हम सबको कल राजमहल बुलाया है. इप्सिता के पिता थोड़े कन्फ्यूज होकर बोले, कल? लेकिन क्यों, वो भी इतना अर्जेंट? सुहासिनी जी ने समझाते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि रानीसा चाहती हैं कि हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर लें, और अभी उनकी बेटी अर्पिता जी भी वहीं राजमहल में रुकी हुई है, तो वो चाहती हैं कि शादी की जो भी बातचीत होनी है वो उनकी बेटी और दामाद जी के सामने हो जाए तो अच्छा रहेगा. इप्सिता के पिता ने हाँ में सिर हिलाया.
ठीक है, अगर रानीसा ऐसा चाहती हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। रानीसा की बात भला कौन टालेगा? सुहासिनी जी ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, लेकिन इप्सिता को हम वहाँ कैसे ले जाएंगे? क्या वो वहाँ जाने के लिए तैयार होगी, वो भी शादी से पहले? इप्सिता के पिता थोड़े हैरान होकर बोले, क्या उन्होंने ईशु को भी वहाँ बुलाया है? सुहासिनी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी इप्सिता के पिता बोले, इप्सिता को आप ये मत बताइएगा कि उसकी शादी की बात करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, वरना वो शायद जाने में थोड़ा कतराए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। कुछ देर बाद इप्सिता नंदिनी के साथ अपने कमरे से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। इतना बोलकर नंदिनी भी इप्सिता के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उदय भी तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुका था और सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुहासिनी जी ने कहा, इप्सिता बेटा, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना और अच्छे से तैयार हो जाना, कल हमें राजवंशी महल चलना है। इप्सिता ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये बात सुनते ही उसके गले में खाना अटक गया और उदय भी हैरानी से अपने माँ बाप की तरफ देखने लगा। इप्सिता के पिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय, आपको भी हमारे साथ चलना है, इसीलिए आप अपनी कल की सारी मीटिंग्स आज ही कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई भी आपकी मीटिंग बचती है तो उसे परसों शिफ्ट कर दीजिएगा, आप भी कल हमारे साथ चलेंगे। नंदिनी वहां बैठी हुई सबकी बात सुन रही थी। उनकी पारिवारिक बातों के बीच वो काफी असहज महसूस कर रही थी। इप्सिता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मम्मी पापा, क्या हमारा भी वहां जाना जरूरी है? इप्सिता के पिता ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, रानीसा ने बुलाया है तो वहां जाना जरूरी ही होगा और हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते हैं इप्सिता। इप्सिता ने धीरे से सिर झुका लिया और उसकी नजर नंदिनी पर गई जो चुपचाप बैठी थी। इप्सिता ने कहा, मम्मी पापा, नंदिनी भी हमारे साथ जाएगी। ये सुनकर नंदिनी ने इप्सिता का हाथ दबाया और धीमी आवाज में कहा, ये क्या बोल रही हो इप्सिता, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? इप्सिता ने नंदिनी को घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने कहा, मम्मी पापा, अगर नंदिनी हमारे साथ जाएगी तो हमें भी थोड़ी संगति मिल जाएगी और हम वहां पर बोर नहीं होंगे। ये बात सुनकर इप्सिता के माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इप्सिता अपनी सहेली को भी राजमहल ले जाने की जिद करेगी। क्रमशः
क्या इप्सिता पूछेगी अपने माता पिता से कि वे लोग राजमहल क्यों जा रहे हैं? क्या पता चलेगा इप्सिता को कि उसकी शादी की बात के लिए ही सब वहां जा रहे हैं? और क्या नंदिनी उसके साथ जाने को राजी होगी? क्या इप्सिता के माता पिता नंदिनी को अपने साथ ले चलने की अनुमति देंगे? सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक कमेंट जरूर करिए और बताइए कैसा लगा आपको आज का एपिसोड।